हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 15 टेक्स्ट नंबर 20। हृदय की समस्त चंचलता, मलिनता और बुद्धि में स्थापित समस्त भौतिक विचारों का परित्याग करके पूरे मन, श्रद्धा, भाव और सच्चे हृदय के साथ मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सूते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। चैप्टर 15 और इस अध्याय का आज हम अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हमें ये बता रहे हैं कि अभी जो मैंने आपको बताया है वो कितना इम्पोर्टेंट और कितना सीक्रेट चीज बताई है। और इसको जानने के बाद पहले ही हमें भगवान ने कहा कि जो इसको जान लेगा वही ज्ञानी है, वही वेदों का जानने वाला है। और आज भगवान हमें बता रहे हैं कि मैंने आपके ऊपर कितनी कृपा की है ये सब बताकर। भगवान कहते हैं चैप्टर 15 टेक्स्ट नंबर 20। भगवान कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मयानघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं, इति मतलब इस प्रकार, इस प्रकार तो किस प्रकार, जैसे अभी हम लोगों ने श्लोक नंबर 19 में पढ़ा ना, यो मामेव मसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। जो बगैर किसी मोह के बिल्कुल संशय रहित होकर मुझे पुरुषोत्तम जानता है, सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भरत पुत्र, वह सभी प्रकार से सब कुछ जानने वाला है, वेदों का जानने वाला है, और वो क्या करता है जानकर, सर्वविद भजति माम, अच्छे प्रकार से मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है, भगवान कहते हैं इति गुह्यतमम शास्त्रम, जितना शास्त्रों के अंदर सीक्रेट है ना। अब देखो, एक होता है गुह्य, एक होता है गुह्यतर, और एक होता है गुह्यतमम। मतलब जैसे सुपरलेटिव डिग्री होती है ना किसी चीज की, जैसे हम बोलते हैं सीक्रेट, मोर सीक्रेट, मोस्ट सीक्रेट। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर गुह्यतमम शब्द का उच्चारण किया है, जिसका मतलब होता है सर्वाधिक गुप्त, इससे अधिक गुप्त और कुछ नहीं, सबसे ज्यादा सीक्रेट बात जो शास्त्रों में लिखी हुई है। अब सीक्रेट बात कैसे लिखी हुई होती है, इतने मतलब हिंट्स में लिखी हुई होती है, हमें सही तरह से समझ में नहीं आती है, लेकिन शास्त्रों में वेदों में ये बात बहुत सीक्रेट तरीके से लिखी हुई है। और भगवान कहते हैं इदम उक्तम मयानघ, इदम मतलब यह, उक्तम मतलब प्रकट कर दिया। अब वो वेदों में तो बहुत सीक्रेट तरीके से लिखी हुई है, अगर कोई पढ़ेगा तो शायद उसको कैच भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेदों में जो पढ़ते हैं वो उसी सकाम कर्मों और उनके फलों में ही जो है ना वो आसक्त हो जाते हैं। तो इस सीक्रेट बात को, कौन सी सीक्रेट बात को, कि भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है और उनकी भक्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसको कोई पकड़ बुद्धि पकड़ नहीं पाती, क्योंकि बहुत सीक्रेट तरीके से लिखी होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कृपा का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं इदम उक्तम मयानघ, हे मयानघ, हे पाप रहित। देखो यहाँ पर एक बात तो हमें समझ लेनी चाहिए कि भगवान की बात को समझने के लिए हमें पाप रहित होना पड़ेगा। जब तक अपराध करते रहेंगे, जब तक गुनाहों में गिरे हुए होंगे, तो अपराधी लोग जो होते हैं वो भगवान की बात को नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें पाप रहित होना पड़ेगा। आप बोलोगे पाप रहित तो होना संभव नहीं है। देखो मुख्य चार पाप जो शास्त्रों में बताए गए हैं, एटलीस्ट हम उनसे बच सकते हैं, और उनसे बचने के बाद हम इस लेवल पर पहुंच सकते हैं कि भगवान की भक्ति कर सकें या भगवान के शब्दों को समझने का प्रयास कर सकें। और वो हैं कौन कौन से, अवैध स्त्री का संग त्याग करना, जुआ नहीं खेलना, मांस आहार ना करना, और शराब ना पीना। ये चार चीजें ऐसी हैं जो कि हमें भक्ति के महल में दाखिल होते ही अगर हम इनका करते हैं ना उपयोग अपने जीवन में, तो भक्ति की दीवार जो है, भक्ति की जो नींव है, छत है, वो गिर जाती है। क्योंकि भक्ति जो है वो चार स्तंभ पे टिकी हुई है। भक्ति के चार स्तंभ हैं दया, सत्यता, पवित्रता और तपस्या। दया खत्म हो जाती है यदि कोई मनुष्य मांस आहार करता है, तो पहला स्तंभ गिर जाता है, तो भक्ति की दीवार, भक्ति के उसके अंदर हम लोग नहीं प्रवेश कर सकते भक्ति के महल के अंदर। दया खत्म होती है मांस आहार करने से, पवित्रता खत्म होती है अवैध स्त्री या पुरुष का संग करने से, सत्यता खत्म हो जाती है जुआ खेलने से। यानी कि ये स्तंभ है, जैसे हमने उस चीज का प्रयोग किया तो स्तंभ मतलब वो पिलर गिर जाता है, और जब पिलर गिर जाता है तो छत जो है भक्ति की वो भी गिर जाती है। और इसके अतिरिक्त है तपस्या, तो तपस्या खत्म हो जाती है नशा करने से। मतलब हमारी भक्ति जो टिकी हुई है, हमारी भक्ति के महल में यदि हम लोग अगर रह रहे हैं, तो उस भक्ति को टिकाने के लिए ये चार अपराधों से तो हमें एट लीस्ट बचना पड़ेगा, तभी हम भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को ग्रहण कर पाएंगे। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को मयानघ यानी पाप रहित कहकर उच्चारण किया है। और आगे भगवान ने बहुत सुंदर शब्द उच्चारण किए, भगवान कहते हैं एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। एतद् मतलब इस, एतद् यानी कि यह मतलब जो ये जान लेता है, बुद्ध्वा समझकर, ये चीज जो समझ लेता है बुद्धिमान, वो बुद्धिमान स्यात, वो बुद्धिमान हो जाता है जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि सारे वेदों का सार क्या है, भगवान श्री कृष्ण है, वो पुरुषोत्तम है, उनकी भक्ति करना ही सारांश है। तो ये जो समझ जाता है वो एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, वो बुद्धिमान बन जाता है। यानी कि यहाँ पर ये बात तो सुनकर आपको खुशी होनी चाहिए कि जब आप सबको ये पता चल गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है और हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना है, तो यहाँ पर भगवान ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप बुद्धिमान हो, क्योंकि भगवान ने साफ साफ कहा एतद् बुद्ध्वा, ये जान लेता है बुद्धिमान स्यात् और वो बुद्धिमान बन जाता है। और बहुत ही सुंदर शब्द आगे भगवान ने उच्चारण किए, भगवान कहते हैं कृतकृत्यस्य भारत। कृतकृत्य का मतलब होता है अपने जितना भी उसने आज तक इस मनुष्य योनि में पहुंचने तक जो प्रयास किए हैं और इस जन्म में भी जो जो प्रयास किए हैं वो यहाँ पर आके संपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ ये नॉलेज खाली, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बोला ना कि सारे वेदों में जो वास्तविक गुप्त बात है वो ये है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ और मेरी भक्ति करनी चाहिए। और भगवान कहते हैं कि तुमने जिंदगी में जितने भी पिछले जन्मों में इतने सारे प्रयास किए हैं, इस निष्कर्ष पर जब पहुंच गए हो कि तुम ये जान गए हो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वोत्तम लक्ष्य है मेरे जीवन का और कृष्ण ही भगवान है, तो समझो तुमने जितना भी परिश्रम किया है वो सफल हो गया। ये पॉजिटिव में बता रहे हैं। कल हमें ईश्वर प्रभुपाद ने बताया था जिसने इतने सारे वेद पढ़े हो, बहुत सारे शास्त्र पढ़े हो, इवन उसको समझ दिया हो, बहुत अक्लमंद सांसारिक लिहाज से वो कहलाता हो, लेकिन यदि उसको ये पता ना चला हो कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण पुरुषोत्तम है, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो लास्ट लाइन में हमने देखा पढ़ा था, तो उसका उसके अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ हो जाएगा। जो भी उसने अनेक जन्मों तक जो भी कार्य किए हैं, जो भी श्रम किया है, वो व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें अगर कोई डाउट है अपने हृदय में कि कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुषोत्तम हो सकता है या कोई परमात्मा या ब्रह्म, तो यहाँ से एकदम क्लियर, एकदम बुद्धिमान होकर जाना है। भगवान ने साफ कह दिया है हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गोपनीय, सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट कर दिया। वेदों में तो बहुत सीक्रेट तरीके से लिखा है, लेकिन मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया, एकदम सब ओपनली सबको बता दिया है कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य यही है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। जिसे ये बात समझ में आ गई वही बुद्धिमान है और उसने आज तक जो भी कार्य किए हैं, जो भी श्रम किया है, वह पूर्ण हो जाएगा। श्रीला प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमशों से मुक्त हो जाएगा। श्रीला प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि देखो भगवान ने जिस तरह बताया है आपको उसी तरह से ग्रहण करना होगा। और सबसे बड़ी मनुष्य की क्या प्रॉब्लम होती है, प्रकृति के गुणों की वजह से वो प्रॉब्लम हो जाती है उसको, और वो कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में गिर जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे आता रहता है इस वृक्ष में। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने इसके से अगर हम भगवान को समझ जाएंगे जैसे भगवान ने बताया है और भगवान की दिव्य सेवा में लग जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमशों से मुक्त हो जाता है। जितने भी प्रकृति के गुण के अंदर भौतिक कलमश हैं, जो गंदगी है, वो हम पर अटैक नहीं कर पाएगी। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। हमने भक्ति के विषय में बहुत कल भी पढ़ा था, लेकिन चूंकि ये जो है सार है, तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रह सकता। भक्ति जहां पर होती है, जहां पर भक्ति, भक्ति का मतलब है ना, आप लोग को क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर भक्ति के मन, जब भक्ति में माइंड में आए ना, तो आपके माइंड में ये नहीं आए कि कोई अगरबत्ती कर रहा है वो भक्ति है, या जो कोई भगवान की आरती कर रहा है तो वो भक्ति है, या जो तिलक लगा के मेरी तरह ढोंग लगा के सांग रचता है वो भक्त है। भक्ति का मतलब ये नहीं है। भक्ति का मतलब एकदम सरल, कोई बोले ना भक्ति तो आपके माइंड में ये आना चाहिए। भक्ति की डेफिनेशन चुष्णा रूप गोस्वामी ने बताई है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमाः, कि बस आपके हृदय में कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा ना हो। जो भी आप कार्य कर रहे हो, कार्य भक्ति नहीं होती है, जो आप एक्ट कर रहे हो ना, जो काम हो रहा है, चाहे वो भगवान का, चाहे वो प्रसाद बना रहे हो, चाहे अर्पण कर रहे हो, चाहे ड्रेसिंग कर रहे हो, ये भक्ति नहीं है। अगर आप प्रसाद भी बना रहे हो तो फिर खुद के खाने के लिए बना रहे हो, लेकिन भगवान को आप बाद में अर्पण भले कर रहे हो, लेकिन माइंड बताए कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स जस्ट चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। खाली आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि मैं, इवन भक्ति का मतलब ये भी हो सकता है कि आप घर में बैठ के अपने घर को साफ कर रहे हो, तो ये भी भक्ति हो सकती है, यदि आपके हृदय में सिर्फ इतनी बात आ जाए कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रही हूँ। आप कार्य क्या कर रहे हो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप विचार क्या कर रहे हो इट इज इम्पोर्टेंट। तो अनुकूले न कृष्णानु, जो आप कार्य कर रहे हो, मैं वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रही हूँ, मैं भगवान को खुश करना चाहती हूँ, पब्लिक को अपने बारे में बताने के लिए नहीं कर रही हूँ कि देखो मैं कितना अच्छी सेवा कर रही हूँ, मैं इतनी अच्छी भक्त बन गई हूँ। पब्लिक में अपने आप को फेम के लिए नहीं कर रहे हो, अपने शोहरत के लिए, नाम के लिए, कीर्ति के लिए ये कार्य नहीं हो रहा है। जो भी कार्य हो रहा है, चाहे वो सेवा हो रही है, चाहे वो प्रचार हो रहा है, चाहे शास्त्र अध्ययन हो रहा है, चाहे जप हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और गुरु को खुश करने के लिए जो किया जाता है वो भक्ति है। इस पॉइंट को अगर आप पकड़ते हो ना, तो ये बात सी समझ में आएगी कि जो श्री प्रभुपाद जी भक्ति के विषय में कहते हैं कि जहाँ भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं होता, क्योंकि जहाँ कृष्ण ने प्रवेश कर लिया। देखिए भगवत भक्ति तथा स्वयं कृष्ण एक ही है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति यानी कि कृष्ण को प्रसन्न करने की विधि, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अगर वो आप कर रहे हो तो वो कृष्ण से भिन्न नहीं है, वो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। अब संसार में भौतिक क्या है, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर ये तो भौतिक है, लेकिन अगर आप कृष्ण के लिए कुछ कर रहे हो तो कृष्ण आध्यात्मिक है, तो फिर आप जो कार्य कर रहे हो वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा। यानी भक्ति भौतिक स्तर पर नहीं होती, भक्ति मादी लेवल पर नहीं होती है, भक्ति स्पिरिचुअल लेवल पे होती है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या है कि मैं कृष्ण को खुश करना चाहती हूँ, बस ये हृदय में आ जाए ना बात, तो समझो सारी गंदगी खुद ब खुद परेशान हो जाती है। जो हमारे हृदय में जो अपराध होते हैं ना, वो भागने के लिए जगह ढूंढ रहे होते, छुपने के लिए, जब हम कृष्ण के लिए सोच रहे होते हैं ना, तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, वो सोचते हैं कि यहाँ पर भक्ति का इतना ताप है, इतनी तीव्रता है, तो ये जलकर भस्म हो जाते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ऐसा स्थान हमें मिले यहाँ से निकल कर हम जहाँ चले जाएं। तो जहाँ भक्ति होती है वहां पर भौतिक कलमश, भौतिक गंदगी रह ही नहीं सकते। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। ये अंतरंगा शक्ति, जैसे मैंने आपको बताया था ना, तीन शक्तियां भगवान की होती है, एक बहिरंगा शक्ति होती है, एक तटस्थ शक्ति होती है, और एक अंतरंगा शक्ति होती है। तो जो अंतरंगा यानी कि भगवान की जो अंदर की जो शक्ति होती है, अलादिनी शक्ति, उसके भीतर रहकर हम भक्ति कर सकते हैं। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, अज्ञान माया है, तो ये अंधकार की समान है। और यहाँ कृष्ण ताहार नाही माया रे अधिकार, जहां पर सूर्य विद्यमान है, क्योंकि भगवान सूर्य के समान है, वहां अंधकार माया गंदगी अज्ञानता का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भक्त जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत, यहाँ पर श्री प्रभुपाल जी वापस हमें याद करा रहे हैं कि देखो भक्ति तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, भक्ति गुरु महाराज के मार्गदर्शन में होती है, सीनियर डिवोटी के मार्गदर्शन में हमें भक्ति करनी चाहिए, जैसा श्री प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों में, या जैसे हमारे गुरु महाराज हमें बताते हैं उनके मार्गदर्शन, यानी उन्होंने जिस तरह से हमें बताया, जो गाइड करते हैं, उसी के अंतर्गत भक्ति की जाती है, तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता है। कुछ लोग अपनी मर्जी से सेवा करते हैं, जिसमें कोई भी है ना रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं करते हैं, तो वो नहीं, लेकिन हमें गुरु महाराज के बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन करते हुए विधि विधानों का, पहले शुरू में हमें वैदिक भक्ति करनी पड़ती है, यानी कि जो विधि विधान बताए गए हैं कि भाई भगवान को इस तरह से आरती करनी होती है, इस तरह से भगवान को भोग लगाना होता है, मंगल आरती होती है, संध्या आरती होती है, भगवान को इस तरह से श्रृंगार करना होता है, ये सारी चीजें जो विधि विधानों के अनुसार हम करते हैं, जैसे हमारे सीनियर डिवोटीज हमें बताते हैं, उसके अनुसार जो बात की जाती है, तब श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि फिर ही अज्ञानता नष्ट होती है। आगे है, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावना को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब तक आपकी दुखों की, आपके हृदय की मलिनता और अज्ञानता का नाश नहीं होगा, जब तक कि आप कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर नहीं लेते हो और शुद्ध हृदय से भगवान की भक्ति नहीं करते हो, जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता है, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं होता है। यहाँ पर कितना श्रीला प्रभुपाद जी क्लियर बता रहे कि देखो, इस संसार में आप डेफिनेशन अलग होती है, हर चीज का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है सोचने का। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर बन जाता है तो उसको बुद्धिमान कहते हैं, या कोई इंजीनियर बन जाता है उसको बुद्धिमान कहते हैं, कोई सीए कर लेता है तो उसको बुद्धिमान, कोई कंप्यूटर ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है तो उसको बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कृष्ण की बुद्धिमान दृष्टि में बुद्धिमान क्या है, कि जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता, किस प्रकार नहीं समझता, कि भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है और उसकी उसकी भक्ति करना ही हमारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है, सबसे ऊपर वाला लक्ष्य क्या है कि भगवान की भक्ति करनी है, और जब तक वो ये सोचकर भक्ति में नहीं लगता है, तब तक क्या, सामान्य मनुष्य की दृष्टि में चाहे वो कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं होता। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि ये जो आप कृष्ण की भक्ति करते हो ना, गिने चुने चार लोग बैठे हुए होते हो तिलक लगा के और हरे कृष्णा करते हो, इसमें कोई बुद्धिमानता नहीं है। देखो, ब्रह्म ज्ञान में जाके देखो कितने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग आते हैं, कितना ना कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। आप लोगों के हरे कृष्ण सोसाइटी में तो सिर्फ चार जो यंगेस्ट लोग होते हैं, जिनको है ना संसार में कोई वैल्यू भी नहीं होती है उनकी, ना कोई उन्होंने भौतिक एजुकेशन ग्रहण की हुई होती है, ऐसे लोग ही बस वहां पर नजर आते हैं। तुम वहां जाती क्यों हो? मुझे स्पेशली बोला जाता है कि तुम ब्रह्म ज्ञान वगैरह को ज्वाइन करो, अक्ल है तुम्हारे पास, तुम अच्छे तरीके से है ना उसको अडॉप्ट कर सको, क्योंकि तुम जाती क्यों हो? तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है ना कि हमें बुद्धिमान कौन लग रहे हैं, जो सांसारिक, जिन्होंने बहुत ज्यादा ज्ञान हासिल कर लिया है, जिन्होंने बहुत। लेकिन यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा ऊपर जाके देखें ना हम लोग, कि भगवान श्री कृष्ण को अब वो लोग क्या ब्रह्म ज्ञान में क्या बताएंगे कि भगवान निराकार है, भगवान परमात्मा है, विग्रह सेवा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, क्या भोजन अर्पण करके खाते हो, ये वो खाओ, सीधे तरह से तुम लोग जो भी खाना है खाओ, मांस खाओ, मच्छी खाओ, और है ना अनियन कांदा लहसुन गार्लिक ये सब खाओ, ये बताते हैं। और फिर वो अब यहाँ का जो भौतिक एजुकेटेड बंदा होता है बोलता है, यार यहाँ पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, अच्छा है बस खाओ पियो और मान लो कि भाई हाँ मैं ही परमात्मा हूँ, तो बस परमात्मा खा रहा है, गोश्त खा रहा है उनके अंदर में बैठ कर, तो उसी से वो संतुष्ट है। लेकिन अगर थोड़ा सा बुद्धि को थोड़ा सा तीव्र करें कि आज चलो ठीक है इनको आप बुद्धिमान कहते हो, लेकिन जिस दिन ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है, पहले जो कर चुके हैं उनको क्या कहोगे, पितामह भीष्म को क्या कहोगे, जिनको जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अग्र पूजा के लिए रिकमेंड किया था, ध्रुव को क्या कहोगे, प्रहलाद को क्या कहोगे, इनको छोड़ दो ब्रह्मा जी को क्या कहोगे, जो कहते हैं कि ईश्वर परमः कृष्ण, जो साक्षात भगवान और साफ बताते हैं, वैणुं क्वाणंतम, जो बांसुरी बजाते हैं टेढ़े खड़े होते हैं, विग्रह जिनकी, उनकी विग्रह सच्चिद आनंद विग्रह, उनकी विग्रह के बारे में बताते हैं कि उनका जो साकार रूप है वही सच्चिद आनंद है, उसके बारे में क्या कहेंगे, वो बुद्धिमान नहीं थे। शिव जी के विषय में क्या कहेंगे जो 24 घंटे भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, उनका ध्यान लगाते रहते हैं। भगवान जब इस संसार में अवतीर्ण होते हैं बालक रूप में लीला करते हैं तो उनके दर्शन कर, तो वो बुद्धिमान नहीं थे। ये आज जिसने चार किताबें पढ़ ली है वो बुद्धिमान है। तो श्री प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर ये बात कितना क्लियर कर रहे हैं कि कोई इतना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं होता है जब तक वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता है। जिस अनंग शब्द, आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अनंग शब्द से जो अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखिए, मैं श्लोक को इसलिए आपको बताती हूँ ताकि आपको पता चले कि श्लोक पढ़ रहे हैं और श्लोक में अनंग कहाँ लिखा हुआ है। भगवान ने कहा है इति गुह्यतम शास्त्रम एदमुक्त मया नघ। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यह, अनग अर्थात निष्पाप। इसका अर्थ होता है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मष्ट समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए तभी वह समझ सकता है, लेकिन भक्ति करना। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि जब भक्ति में आप आ जाते हो तो जाहिर सी बात है आपको चार नियम का पालन करना पड़ता है, और वो इतना शुद्ध है कि इतनी शुद्ध ये रीति है तथा शक्तिमान है, उसके अंदर इतना पावर है, क्योंकि जो भक्त बनता है तो वो चार नियम का पालन करता है, वाइन विमेन मीट ईटिंग एंड गैम्बलिंग, इनसे रुकता है और भगवान श्री कृष्ण के विषय में अनुकूल न कृष्णानु, भगवान की खुशी के लिए कार्य करना शुरू कर देता है, तो उसमें इतना पावर आ जाता है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। उसने पिछले जन्म में चाहे कितने ही अपराध क्यों न किए हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9.31 में, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। अगर उसने अपने जीवन में करोड़ों करोड़ों अपराध, सुदुराचारी भी क्यों न हो उसने किए होंगे, लेकिन अगर वो भजते माम अनन्य भाग, जब वो मेरी अनन्य भक्ति यानी अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधिनावतम अनुकूल न मेरी, मुझे खुश करने के लिए यदि वो दूसरी किसी कामना के लिए नहीं करता है, सिर्फ मेरी खुश करने के लिए सोचता है, तो फिर साधुरेव समन्तव्य, सोच लो समझ लो सारे लोगों को, ये भगवान श्री कृष्ण डायरेक्शंस देते हैं कि उसे आपको अनग समझना है, साधु समझना है, क्योंकि सम्यक व्यवसितो ही सह, उसने बिल्कुल सही तरह से अपने जीवन को गुजारना शुरू कर दिया है, तो वह निष्पाप हो जाता है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति स्टार्ट करता है, शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें कुछ सिखा रहे हैं कि जब हम शुद्ध साधु भक्तों की संगति में रहते हैं तो कुछ बातों को खत्म करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की दुर्बलता। श्री प्रभुपाद जी हमें आज बहुत ही खूबसूरत बात बता रहे हैं कि देखो, अगर जब तक आपके हृदय की दुर्बलता खत्म नहीं हो जाती है तब तक आप शुद्ध भक्तों के संग से सही लाभ प्राप्त नहीं कर सकोगे और सही तरह से भक्ति नहीं कर सकोगे। और शुद्ध हृदय की दुर्बलता क्या है वो श्री प्रभुपाद जी आगे बताते हैं। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है, यानी कि मैं इस चीज का मालिक हूँ। प्रकृति की किसी भी चीज को आप पकड़ के बोल सकते हो, घर हो, जायदाद हो, या फिर अपना कोई रिलेटिव हो जिस पर हम प्रभुत्व जताते कि ये चीज मेरी है, तो ये मन से निकाल देना है। क्यों निकाल देना है? क्योंकि मैं तो खुद दास हूँ। दास की क्या वैल्यू होती है? दास की सिर्फ इतनी वैल्यू होती है कि वो अपने मालिक की, जिसका वो मालिक है, जो अपना मास्टर, उसकी अच्छी सेवा करे। वो दास का किसी चीज पर अधिकार नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है, तो किसी चीज पर आप कैसे अधिकार कर सकते हो कि यह संपत्ति मेरी है? आपका अगर किसी चीज पर अधिकार है तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के ऊपर, कि कृष्ण मेरा मालिक है, कृष्ण मेरा भगवान है, कृष्ण ही मेरा सब कुछ, कृष्ण है। अधिकार जताना है ना तो कृष्ण पर जताओ कि तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता, तुम मेरे सब कुछ हो बस, और संसार में जो कुछ है वो तुम्हारा है। तो ये प्रभुत्व जताने के हृदय में जो मलिनता है उसको सबसे पहले हमें खत्म करना है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग सॉरी यहाँ पर लिखा है, पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। और जब हम ये सोचते हैं ना कि हम ये चीज हमारी है या इसके मालिक हम हैं, तो क्या होता है, भगवान की प्रेमा भक्ति को त्याग, क्योंकि फिर उसके हृदय में ये आ गया कि मैं भी कुछ हूँ। प्रेमा भक्ति तब होती है जब आपको ये पता चल जाता है कि मैं दास दास दासानुदास, जब ये हृदय में आता है तो फिर वो प्रभुत्व नहीं जताने की कोशिश करेगा। दूसरी हृदय की दुर्बलता क्या है, जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। एक तो पहले हम बोलते हैं कि ये मेरी है मेरी है मेरी है, और जब ऐसा हम लोग सोचते रहते हैं, प्रभुत्व जताने की इच्छा जब बढ़ जाती है तो क्या, भौतिक पदार्थ में स्वामित्व के प्रति आसक्ति हो जाती है। फिर आपको उसके अंदर अटैचमेंट इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ पर बताया श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वो अटैचमेंट जो है वही संसार की सारी समस्याएं इसी हृदय की दुर्बलता से कारण होती है। यही अटैचमेंट जो हम लोगों को संसार से या संसार की चीजों से या प्रकृति से हो गई है ना, जिसके बारे में सब हमेशा सोचते हैं कि ये मेरी है, इसका मुझे इसका पालन करना है, या ये भगवान का है सब कुछ, और ये अटैचमेंट को हमें किस तरह से खत्म करना है वो भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया था। श्लोक नंबर 15.3 में हम पढ़ चुके थे, भगवान ने कहा, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़े न छित्वा। वैसे तो यह वृक्ष जो है जिसके विषय में हमने पढ़ा, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, और ये भगवान ने कहा ऐसा संसार में आपको प्रतीत नहीं होता है क्योंकि आपने इस तरह का कोई वृक्ष देखा नहीं है, लेकिन आपको इसकी दृढ़ जड़ों को काटना पड़ेगा डिटैचमेंट के हथियार से, असंग के हथियार से, प्रभुत्व जताने के जो इच्छा है उस हृदय की दुर्बलता को खत्म करके किसी के अंदर कोई आसक्ति नहीं रखनी है, और फिर इस तरह से हम इस दृढ़ जड़ों वाली वृक्ष को काट सकते हैं। और फिर कहाँ जाना है, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, तब हमें एक ऐसी जगह खोजनी है यस्मिन गताना निवर्तन्ते भूयः, जहाँ पर पहुंचकर हम वापस इस संसार में नहीं आएंगे। और वहां पर जाने का तरीका यहाँ पर प्रभुपाद ने बहुत सरल बता दिया कि आपको क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है और हृदय से ये दुर्बलता खत्म करनी है कि संसार में मेरा कुछ है या किसी चीज पर मेरा प्रभुत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने हमारी सारी समस्याओं को यहाँ पर खत्म कर दिया, केवल कृष्ण की भक्ति ही हमें इस जो बहुत ही दुर्विजय यानी जिस पर विजय पाना बहुत ज्यादा कठिन है, ऐसे वृक्ष से बचा सकती है। और आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। प्रथम 5 श्लोक, मेरा बहुत मन है कि मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करूं, समय हो गया, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। पहले भगवान ने बताया, ऊर्ध्व मूलम मदः शाखम अश्वत्थम प्राणो अव्ययम छन्दांसि यस्य प्राणानि यस्तम वेद सवे वेदवित। वेदों में वेद जो है उनके पत्ते हैं, ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने इस चीज को बहुत क्लियर करके बताया कि वास्तव में वृक्ष जो है जिससे हमें खुश होना है, वो वृक्ष जो है वो गोलोक वृंदावन धाम है, लेकिन इस संसार में हमें ये इसकी छाया नजर आती है, इसलिए क्या हम इसको रियल समझ बैठते हैं। वास्तव में ये रियल नहीं है, लेकिन हम इसको असली वृक्ष समझते हैं और ऊपर नीचे इसमें गोते खाते रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय का 5वां श्लोक बहुत ही सुंदर बताया है, जिसमें साफ साफ बता दिया गया है कि इस वृक्ष से किस तरह से हम छूट सकते हैं। भगवान ने कहा, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वन्द्वैर्वमुक्ताः सुख दुःख संगै गच्छन्त्य मूढा पदम अव्ययम् तत्। झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्ति, ये सारी चीजों से हमें मुक्त होना पड़ेगा यदि हम इस वृक्ष के चुंगल से निकलना चाहते हैं, जो तात्व जो शाश्वत तत्व को समझते हैं जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया। इच्छा, भौतिक इच्छा, देखो दो चीजें, दो इच्छाएं हमारे हृदय में होती हैं, उनमें से एक काम होता है और एक प्रेम होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं, निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम। जहां पर तुम्हारे हृदय में ये ख्याल आ जाए कि मैं किस तरह से अपनी इन इंद्रियों को तृप्त करूं, किस तरह से मैं अपने हवासों की आग बुझाऊं, तो वो काम है, वो प्रेम हो ही नहीं सकता। शास्त्र कहता है निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम, कृष्णेर इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम यही प्रेम नाम। तो वो उसका नाम प्रेम है जो हम भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए करते हैं, और बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं वो काम है। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें अनुवाद में बताया, जिन्हें भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त है, अब उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। इच्छा की ना पूर्ति होने से दुख मिलता है और पूर्ति हो जाने से सुख मिलता है। तो जो मोह रहित होकर परम पुरुष भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, शरण ग्रहण करने को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि शरण ग्रहण करने का मतलब होता है भगवान की भक्ति, और भक्ति को सीमित करके बहुत ही हमारे लिए श्री प्रभुपाद ने क्लियर करके बता दिया, श्रवण तथा कीर्तन ये है, इसी से हम भगवान को खुश कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है ना भगवान को खुश करना ही आध्यात्मिकता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ श्रवण करो। श्रवण में जो शुद्ध भक्त जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो शास्त्र इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो गुरु इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको स्वीकार करना, अपने जीवन में उतारना, और वो इंस्ट्रक्शन क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन करना। इंस्ट्रक्शन यही होगी कि हमें हमेशा सदैव भजिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना सरल और इतना सुगम करके बता दिया हमें अपने जीवन को किस तरह से गुजारना है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं को अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना की है। और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि किस तरह से मैं हर चीज में, हर एक क्षण में तुम्हारे रक्षण करता रहता हूँ, हर चीज जो जिसका तुम उपयोग कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में अनिवार्य है, जिसके बगैर तुम्हारा जीवन संभव ही नहीं है, चाहे वो हवा हो, सूर्य प्रकाश हो, सांस लेने के लिए प्रचंड वायु, या फिर औषधि बीमार से रक्षा करने के लिए औषधि, यहाँ तक कि तुम्हारे पेट में बैठकर वैश्वान अग्नि बनकर पचानम्य चतुर्विधम 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ और तुम्हारी रक्षण करता हूँ। जो कुछ जिस चीज से आज तक तुमने फायदा उठाया है, वो सब कुछ मैं तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ। तो ये सब पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्ण ने आखिर में हमें ये तक बता दिया कि जो मुझे जानता है इस तरह से कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, सब कुछ मैंने ही किया है, और मेरी शरण लेना ही तुम्हारे जीवन की सर्वविद भजति माम, तो मेरे शरण लेना, मेरी भक्ति करना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, वही वेदों का सच्चा ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है, वही अकलमंद है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय पर आने के बाद अपने विषय में सारे के सारे गुप्त रहस्य खोल दिए हैं, और इसीलिए इसको पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय यानी पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां अध्याय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।